ओम शांति। हमारा टॉपिक है कल संडे जो मुरली चलने वाले है उसका रिवीजन। मुरली की रिवाइज डेट है 27 मार्च 1985। टाइटल है मुरली का कर्मातीत अवस्था। तो सारी मुरली में बाप दादा ने क्या किया, चक्कर लगाया और देखा कि कौन कौन सी चीज देखी बाबा ने चक्कर लगा के, वो आज हम डिस्कस करेंगे कि बाबा ने पहले देखा स्थान और स्थिति, दूसरा देखा कि समय प्रमाण बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं, और देखा कि कहाँ तक बंधन मुक्त और योग युक्त बने हैं, फिर बच्चों के सहारे देखे कि दो प्रकार के सहारे बनाए हैं, एक सेवा के साथी और दूसरा साकार साधनों का। फिर आगे बाबा ने देखा कि समय प्रति समय बच्चों की परखने की शक्ति कम होती जा रही है, और फिर बाबा ने कर्मातीत अवस्था की चार परिभाषा बताई है इसी मुरली में और अंत में कि ब्रह्मा बाप कैसे कर्मातीत बने उसके पॉइंट बताए हैं, और फिर विदेशियों से मुलाकात में बताया है बाबा ने। तो आज बाप दादा चक्कर लगा के आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों को देखने के लिए चक्कर लगाया। तो उसमें बाबा ने क्या कहा, जैसे तुम भक्ति मार्ग में क्या करते थे, परिक्रमा लगाते चक्कर लगाते रहते थे, तो ऐसे बाप दादा ने भी चक्कर लगाया। तो बाबा ने स्थान में चार प्रकार के स्थान देखे। पहला देखा कि कोई कोई स्थान कैसे है कि विशेष जो स्थूल साधन है उन्हों से आकर्षित करने वाले है। दूसरे स्थान देखा कि उसमें क्या है, तपस्या का वायुमंडल है, और तीसरे प्रकार के देखे कि त्याग और भाग्य के अर्थात जो सादगी और श्रेष्ठता का वायुमंडल देखा, और चौथे कौन से प्रकार के देखे, साधारण स्थान। तो ऐसे बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्थान देखे और बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार की स्थिति देखी। फिर समय प्रति समय बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं वो देखते हुए कि ब्रह्मा बाप बोले कि कहाँ है बच्चे, कि सब बच्चे सर्व बंधनों से बंधन मुक्त योग युक्त जीवन मुक्त और एवर रेडी है। सिर्फ किसका इंतजार है, कि सिर्फ समय का इंतजार है। तो क्या लगता है कि ब्रह्मा बाबा ने तो देखा 85 में कि सब बच्चे बंधन मुक्त योग युक्त जीवन मुक्त और एवर रेडी बन गए, सिर्फ समय का ही इंतजार है। तो फिर शिव बाबा ने क्या कहा, रूरियान चली बाप दादा की, फिर चक्कर विशेष चक्कर लगा के शिव बाबा ने दिखाया ब्रह्मा बाप को कि देखो कि बच्चे कहाँ तक बंधन मुक्त और योग युक्त बने हैं, क्योंकि जब बंधन मुक्त और योग युक्त बनेंगे तभी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकेंगे। तो इसमें बाप दादा ने क्या देखा कि जो सभी बच्चे हैं वो बड़े बड़े बंधनों से तो मुक्त हो गए हैं, कि जो स्पष्ट दिखाई देते हैं वो सारे जो बंधन की रस्सियां है धागे है वो सब तो तोड़ दिए, लेकिन जो अति सूक्ष्म बंधन है वो बंधन अभी भी रहा हुआ है। तो मोटे रूप से बंधन किसको कहेंगे, भावन का बड़े बड़े बंधन, तो भावन का जो देखने में आते हैं बड़े बड़े बंधन, जैसे कि मोटे रूप से तो सारे विकारों को छोड़ दिया लेकिन सूक्ष्म में उसका अंश अभी भी रहा हुआ है, जैसे कि अटैचमेंट वो सब नाम कि कोई में भी व्यक्ति में वस्तु में या कोई कोई वैभव में कहाँ भी उसका भी सहारा कि उसके बंधन में भी बंधे हुए हैं। तो इसे क्या कहते हैं कि बड़े बड़े जो लोहे की तार थी वो तो तोड़ दी, लेकिन सोने की जो पतली पतली जंजीरें है जो बहुत आकर्षण करने वाली है उसके बंधन में फंसे हुए हैं। तो फिर तो इसके लिए बाबा ने क्या कहा कि जो अति सूक्ष्म बंधन है उसको परखने के लिए दो चीजें की आवश्यकता है, एक तो क्या चाहिए, सूक्ष्म परखने की शक्ति और दूसरा महीन बुद्धि। जब परखने की शक्ति और महीन बुद्धि होगी तभी जो अति सूक्ष्म बंधन है उसको जान सकेंगे। फिर आगे बाबा ने चेक किया तो बच्चों के कितने दो प्रकार के सहारे देखे कि पहला तो कि कोई अति सूक्ष्म स्वरूप सेवा के जो साथी है उसको ही अपना सहारा बना लिया है। तो उसमें बाबा ने कहा कि क्यों सेवा के साथी को सहारा बना लेते हैं, उसके कारण बताए कि कोई सेवा में सहयोगी बनते हैं, समय प्रति समय एक्स्ट्रा हिम्मत देते हैं या आगे बढ़ाने के निमित्त बनते हैं, सेवा में वृद्धि के निमित्त बनेंगे, या कोई कोई का कोई विशेष संस्कार मिल जाता है या फिर कोई विशेष गुण जो विशेषता है वो अच्छी लगती है, इसलिए क्या होता है सेवा का उसको नाम साथी और सहयोगी का देखते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है भावन का झुकाव होने के कारण लगाव हो जाता है। तो उसमें भावन कहा कि लगाव होगा तो क्या होगा परिणाम उसका, तो उसमें भावन ने तीन प्रकार से बताया। पहला तो क्या होगा कि ये भूल जाते हैं कि यह बाप की देन है, कि ये जो है वो मैं बाबा से मिला वो भूल जाएंगे और जो व्यक्ति है वो ही अच्छा लगेगा, कि सोचेगा यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसकी विशेषता अच्छी है, यही गुणवान है, सबसे अच्छा है, और ये भूल जाते कि इसको अच्छा किसने बनाया है। तो बाबा को भूल के वो व्यक्ति को याद कर लेते। फिर दूसरा बाबा ने बताया कि संकल्प मात्र भी किसी के संकल्प मात्र भी बुद्धि में किसी के प्रति झुकाव आया तो वो भी क्या है लगाव ही है। तो इससे क्या हो गया, इससे बाबा ने दो नुकसान बताया है कि संकल्प से किसी को याद आना, तो एक तो क्या होगा कोई भी परिस्थिति आएगी तो हमको पहले कौन याद आएगा, वो व्यक्ति याद आएगा। बाबन का भले तुमको दो चार मिनट के लिए भी वो व्यक्ति याद आया लेकिन उस वक्त बाप का सहारा तो भूल गए। तो हमें भी तो इसका हमारा भी एक अनुभव है कि जब हमारे एक परिस्थिति आई थी तो हमने क्या किया था, पहले सबको फोन किया, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। बताई थी मैं परिस्थिति क्या थी, वो पहले बताया था कि बाबा को छोड़ दिया था जो डेढ़ साल तक बीच में एक डेढ़ साल वाला, फिर वापस सब कुछ हुआ था तो वापस ज्ञान में जो आ गए थे, तब जो खान पान का था तो फ्रेंड का बर्थडे था तो बोला कि कल से ये धारणा कर लेना, फिर दस दिन से तो किया है, ये डेढ़ साल तो हमारे साथ सब कुछ खाया पिया तो इसमें क्या है, तो फिर बोला कल से कर लेना। फिर वो लोग बोले कि ऐसा किया, ऐसा तो कौन सा तुम्हारा बाबा है जो एक इसको दिखता भी नहीं है कुछ ये भी नहीं और इसको तुम खुश करने के लिए हम सबको दुखी कर रही हो इतने लोगों को। तो फिर उस वक्त मैंने क्या किया तो तभी जो क्या तीव्र पुरुषार्थ वाला ग्रुप था तभी हम उसमें जुड़े थे, तो मैंने उसको फोन किया नहीं उठाया, फिर मैं जो जामनगर थे वहां सेंटर की दीदी को फोन किया उसने भी नहीं उठाया, फिर गांधीनगर सेंटर दीदी थे उसने भी फोन नहीं उठाया, तब बाबा याद आया किसी ने नहीं उठाया, तब बाबा को बोला हाँ उठा लिया बाबा ने तो तब हमने बाबा को बोला देख पहले ज्ञान में थे फिर छोड़ दिया था डेढ़ साल तक, वापस अपना बनाकर रखना है तो कुछ भी कर, ये मुझे सामने से बोल दे कि नहीं खाना खाएगी तो चलेगा, डेढ़ साल क्यों छोड़ा, देखो हम जो जब ज्ञान में आए थे तो पहले तो कोर्स तो ऐसे ही कर लिया था, इसमें हमको एक दो बातें पहले मम्मी ज्ञान में आई थी तो वो मम्मी एक बात बताती थी कि हम विशेष आत्मा है महान आत्मा है, तो मैंने भक्ति तो कुछ किया ही नहीं था, वो मुझे हनुमान चालीसा बोलने का कहती थी, मैं सोच रही इतनी बड़ी हनुमान चालीसा तो कौन बोले, तो मैं ऊपर का और नीचे का बोल के पूरा कर देती थी फिर उसने बोला कि एक ही बात याद रखनी कि हम विशेष आत्मा है महान आत्मा, तो मुझे ये पॉइंट तो अच्छी लगी तो मैं तो ऐसे ही दिन में कभी बोलती रहती थी तो उसमें मजा आता, तो फिर कोर्स किया तो कोर्स भी इतना कुछ नहीं, कोर्स में भी वो ड्रामा की पॉइंट ही अच्छी से बैठ गई बुद्धि में, बाकी एक आत्मा वाला फिर ऐसे ही हमारा बर्थडे था तो मम्मी ने बोला चलो सेंटर पर एक दिन मुरली सुनने चलो शाम को, तो मुरली सुनी तो उसमें भी वो आत्मा वाली पॉइंट ही आई, वो भैंस वाला बाबा जो एग्जाम्पल देते है ना कि भैंस है भैंस ऐसा करते है तो पक्का हो जाता है कि मैं भैंस हूँ, तो ऐसे आत्मा का तो वो एक पॉइंट याद है। फिर नुमासाम योग में जो हमें अनुभव हुआ वो बताया कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है और वो कौन सा अनुभव है वो भी हमें समझ में नहीं आता है तो वो जो हुआ उससे हमें लगा कि जो है यही ही अच्छा है, फिर दूसरे दिन से ही क्लास शुरू कर दी, तो लगातार दो साल तक मुरली क्लास चली, एग्जाम थी कोई भी एग्जाम थी सब कुछ, फिर क्लास नहीं मिस करती थी, मुरली क्लास सुबह का। फिर हॉस्टल में जाना हुआ तो हमें जाना ही नहीं था, हमने तो ऐसे ही तय कर लिया था कि जामनगर में ही डेंटल के कॉलेज है तो वहां तो मिल ही जाएगा। फिर एडमिशन के साथ पापा अंदर आया तो उसने ले दिया दूसरी जगह हमारे का एडमिशन कर दिया। फिर वहां गए तो सेंटर से पुराने मुरली लेकर गए थे, गांधीनगर एक दो बार सेंटर पे भी गए थे पर पता नहीं इतना नहीं मुझे वो अच्छा लगा क्योंकि वहां हमको पालना बहुत मिली थी। तो वहां फिर गए और दूर भी था तो पहले तो मुरली पढ़ी, फिर जब घर जाते थे तो मोबाइल का इतना नहीं पता था कि मोबाइल से भी मुरली मिलती है। तो फिर घर गए और वो मुरली का थोड़े लेके आते थे फिर वापस छोड़ देते थे। तो ऐसे एक डेढ़ साल और जो हमारी खान पान की धारणा पहले दिन से ही हो गई थी वहां जाके तुरंत वो भी टूट गई हॉस्टल जाके। तो हॉस्टल में जाने से एक खान पान की धारणा टूट गई, मुरली छूट गई तो फिर अमृत वाला भी छोड़ दिया धीरे धीरे। फिर अमृत वाला भी छोड़ दिया। फिर मैं जामनगर जाते तो मैंने दीदी को बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा को छोड़ दूंगी, तो पुरुषार्थी नहीं हो रहा था जो पहले हो रहा था। तो तब वो याद है दीदी ने बोला कहां भी जा बाबा वापस तुझे लेके आएगा। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ऐसे धीरे 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 करके जो बाबा बोलते शंकर रंग लग जाता है तो लग गया वहां जाके भी शंकर रंग। तो फिर बाबा को छोड़ दिया। फिर ऐसे ही एक डेढ़ साल तक पूरा छोड़ ही दिया था बाबा को, ऐसा नहीं कोई कभी कभार याद करते थे वही नहीं मुरली नहीं अमृत वेला खान पान के धरना कुछ नहीं था। फिर मैं बाबा को वो भी शुक्रिया करती हूँ, अच्छा हुआ वो पुरानी दुनिया भी दिखा दी, अभी मन नहीं करता कि उसमें जाके देखे कि उसमें क्या है। तो फिर ऐसे पैसे एक ऐसे ही फ्रेंड के घर गए थे तो रात में 11:30-12 बजे एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जो पोस्ट ट्रोमेटिक सीजर बोलते हो बहुत कुछ हुआ था। फिर आईसीयू में रखा था 3-4 दिन, वो सारा मेरा मेमोरी लॉस है, मुझे कुछ याद नहीं है। एक्सीडेंट पहले के 1.5 घंटा और वो 3 दिन का। फिर क्या हुआ जैसे ही दूसरे दिन घर गए तभी से बाबा को वापस पकड़ लिया एक्सीडेंट के तुरंत बाद। हाँ मेरा हम पर गलती भी हमारी थी, रात को 11:30-12 बजे हम लोग ट्रिपल पे एक्टिवा पे जा रहे थे वो भी रॉन्ग साइड में। हाँ तो फिर वही तो फिर वो हुआ तो फिर दूसरे दिन से ही वापस बाबा को पकड़ लिया। तभी इसके थोड़े दिन में ये फिर ही हुआ एक्सीडेंट के 10-15 दिन बाद ही बताया वो फ्रेंड का बर्थडे था तो तब बाबा ने मैंने बोला था अब रखना है तो मदद कर दो मैं मानूंगी। तब फिर बाबा ने बहुत मदद की तभी मैं यहाँ भी आई थी इसमें 3 साल पहले यहाँ भी आई थी। तो फिर बाबा ने सब कुछ मेरा इतना सेट कर दिया था। वहां पर एक युगल थे वो मुझे हॉस्टल से ले जाते थे मुरली क्लास के लिए और वापस छोड़ जाते थे। और तभी दीदी ने बोला सेंटर से एक माता थी तो उसका बेटा या तो बेटी दोनों टाइम मेरा टिफिन हॉस्टल पे पहुंचा देते थे। तो फिर बाबा ने दोनों जो मुरली था और खान पान की धरना थी वो सब हो गई और अभी तो बाबा ने यहीं बुला लिया है। तो अभी तो कोई तो ऐसा नहीं वो मुझे वो भी नहीं वो पूरा मेमोरी लॉस है 3 दिन का, वो कुछ याद ही नहीं। वो सब बोलते थे कि ऊपर ही देखती थी, हम पूछे कि ऊपर क्यों देखती तो ऐसे बोलते कि ऊपर देखना अच्छा लगता है। नहीं पार्ट आप बर्थडे वाली पार्टी में वो तो खाने वाला वो तो नहीं खाया था वो नहीं वो तो सुबह से ही उसने बोला था कि पता था कि अभी मैंने बोला था कि अभी वापस मैं पहले जैसे फर्स्ट ईयर में थे वैसे बन जाऊंगी अभी खाना बना छोड़ दिया सब कुछ। तो फिर उसी दिन सुबह से ही सब बताए कैसे ही बोल रहे थे ना कि तुम आना ही होगा कल से कर लो ना ये धरना, अभी 10 दिन से तो की है तुमने पहले तो क्या था। तो ऐसे सबको फोन किया किसी को नहीं किया। तो फिर हम मैं बाबा से सब कुछ अक से ही कहते थे तो ऐसे ही किया देख बना के रखना है तो मदद करना। फिर हम जाके होटल में बैठे उस टाइम उसने बोला कि अब चलेगा नहीं खाना खाएगी तो होटल वाले बोलते हमारे यहाँ जैन खाना भी मिलता जैन खाना। मैंने बोला नहीं खाना तो यहाँ का है ना नहीं खाओगे तो नहीं खाऊंगी। तब वो लोग बोले तो फिर तब से वापस पकड़ लिया बाबा ने। क्या होटल का इतना नुकसान दूसरे आ जाएंगे। क्या हाँ लगाओ झुकाओ तो ऐसे ही सारा बन तो क्या बाबा ने संकल्प से कहा कि हम संकल्प से तो जैसे किसी को याद करते हैं तो क्या होता है जैसे ऐसे उस समय हमने भी सबको याद किया पर किसी ने फोन ही नहीं उठाया तो फिर बाबा आया था ना, दूसरे दिन आया था, मैंने बोला अब नहीं, हो गया मेरा प्रॉब्लम सोल्व। तो वही उस स्थिति से समझ लिया कि तो अभी जो होता है तो पहले बाबा से ही कहना है, तो बाबा या तो टचिंग होती या तो मुरली से या तो किसी और के द्वारा जवाब देते हैं। तो ऐसे क्या हुआ, बाबा उनका संकल्प मात्र भी बुद्धि किसी में जाना वो क्या है, लगा हुआ। तो उसे क्या होता है, एक तो बाप का सहारा याद नहीं आएगा, दूसरा बाबा ने बोला कि जो तुम्हारी याद की लिंक है वो लिंक टूट जाएगी, तो फिर वापस जोड़ने में मेहनत लगेगी। फिर आगे क्या कहा बाबा ने कि दिल का कहा है कि दिलाराम के अगर किसी और की तरफ दिल गया, किसी भी कारण से गया, तो वो भी क्या है, लगा भी है। इसमें बाबा ने क्या कहा, इसी से ही शब्द का यूज किया है कि कोई कोई को क्या लगता है कि यही व्यक्ति के साथ बैठना अच्छा लगता है, कि यही अच्छा है, बाकी सब अच्छे है लेकिन इनका यह गुण विशेष अच्छा है। वह उनका नाम क्या देंगे, ज्ञान योग और सेवा का नाम देंगे, लेकिन क्या समझेंगे, इसी से ही योग करना है क्योंकि इनका ही योग अच्छा है, यही हमें सेवा में साथी चाहिए, यही हमारा सहयोगी बने। तो बावन का यही शब्द क्या करता है, यही शब्द है तो क्या समझो, दाल में काला है, और बावन का यही शब्द आना, इसका ख्याल भी आना माना क्या है, हिंता है, और यही शब्द क्या करती है, साड़ाई गड़बड़ कर देती है। तो इसे मुक्त होने के लिए बावन क्या कहा, यही शब्द को ही तुम हटा दो, यही समझो कि सब अच्छे हैं, सब सहयोगी है। फिर आगे बावन कहा कि दूसरा क्या करते हैं कि साधनों को अपना सहारा बना लेते हैं। तो साधनों को कैसे, जो साकार साधन है, तो इसे समझे कि साधन तो बावन का तुमको सेवा के लिए मिले हुए हैं, लेकिन क्या साधन के वश होकर जो सेवा करना वो है साधनों को सहारा बनना, कि साधन ऊपर नीचे हुए तो हमारी सेवा भी ऊपर नीचे हो जाएगी, और जब साधन नहीं मिले तो क्या होगा, सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो सुभावन कहा जैसे साधन विनाशी है, ऐसे तुम्हारी स्थिति भी कैसी होगी, कभी बहुत ऊंची होगी, कभी नीची होगी, कभी बीच की होगी। तो इससे मुक्त होने, ये दोनों से मुक्त होने के लिए बाबा ने क्या कहा, जो सहारा है उससे मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा, ऐसा समझो कि एक बाप ही हमारा सहारा है, कोई भी मनुष्य आत्मा हमारा सहारा नहीं बन सकती। और जिस बाबा ने जिसको निमित्त वह सहयोगी बनाया है, वो भी किसने बनाया, बाबा ने। तो बाबा ने कहा बनाने वाले को याद रखना है, ये याद रखेंगे तो जो सहारा है उसे छूट सकेंगे, और जो सेवा के साधन है उसके लिए बावन का यही समझो कि ये हमको सेवा के लिए मिला है, उसको हमें आधार नहीं बनाना, ये सिर्फ निमित्त है। सेवा करो और करने के बाद तुरंत न्यारे हो जाओ, उसके आकर्षण में नहीं फंसो। फिर बावन का ये जो बंधन है वो धीरे धीरे करके आते, पहले थोड़ा थोड़ा होता है, फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बावन का पक्का धागा बन जाता है, फिर तुम छोड़ना चाहोगे तो भी उसको नहीं छोड़ सकते हो, उसे नहीं तोड़ सकते हो। फिर बाबा ने इसमें आगे वो सीता का एग्जाम्पल दिया है लगाव में, कि सीता को क्या सोने का हिरण देखकर क्या हुआ कि सोने का हिरण है यही चाहिए। तो इसमें बावन का ये सोना क्या है, भाग्य को खोना है। तो उसमें सीता ने क्या खो दिया, राम को खो दिया और अशोक वाटिका को खो दिया। तो यहाँ हम क्या खो देंगे, बाप को खो देंगे अभी वर्तमान में, और ब्राह्मण परिवार को खो देंगे, और अशोक वाटिका भविष्य में भी सत्ययुग को खो देंगे। तो बावन का ये जो तुम्हारा सूक्ष्म ये सब जो लगाव है वो अंत में क्या करेगा, उड़ने नहीं देगा, कि जो भी बंधा हुआ होगा वो चाहे उड़ेगा फिर क्या होगा, या नीचे ही आ जाएगा। तो कोई कोई क्या समझते हैं कि हम ही अच्छे हैं, हम ही सही है, हम जो करते वो ही राइट है, हम ही कर्मातीत बनेंगे। तो बावन का ये सब क्या है, तुम्हारे बंधन है, ये जो बंधन है वो तुम्हें एवर रेडी बनने में, आगे बढ़ने में और बाप के साथ चलने में रुकावट आएगी, कि नहीं जाने देंगे आगे बढ़ने। भगवान का ऐसे सब सूक्ष्म बंधन जो भी है उसको परख कर क्या करना है, उसको हटाना है। तो उसको परखने की शक्ति और क्या चाहिए, महीन महीन बुद्धि। भगवान का कि परखने की शक्ति से तुम उसको देख सकते हो और महीन बुद्धि से जान सकते हो। तो फिर आगे दूसरा क्या, आगे क्या देखा बाबा ने कि समय प्रति समय बच्चों की परखने की शक्ति कम हो जाती है। तो उसमें बाबा ने बताया, कम होने का कारण बताया है कि परखने की शक्ति क्यों कम होती है, क्योंकि बुद्धि की एकाग्रता कम होती जाती है। तो उनका जहाँ एकाग्रता है वहां परखने की शक्ति स्वतः ही बढ़ती जाएगी। तो इसमें बाबा ने कनेक्ट भी किया और तीन शब्द की परिभाषा दी है, एक रस, एकाग्रता और उड़ती कला। तो भगवान का एकाग्रता क्या है, तो एकाग्रता माना सदा बुद्धि की बुद्धि एक बाप की लगन में मगन रहे, तो इसको ही एकाग्रता कहेंगे। और फिर एकाग्रता की निशानी बताई है कि निशानी क्या है एकाग्रता की, तो उसमें बताया है कि सदा उड़ती कला का अनुभव में, उड़ती कला की अनुभव में एकरस स्थिति रहे। उसमें आगे बाबा ने एकरस स्थिति की परिभाषा बताई है कि किसको कहेंगे एकरस स्थिति और किसको नहीं कहेंगे। तो किसको नहीं कहेंगे एकरस स्थिति, यही रफ्तार है इसमें। एकरस माना भवन का ऐसा नहीं कि जो तुम्हारी स्थिति है वो एक जैसी ही रहे, कि यही रफ्तार है उसको एकरस नहीं कहेंगे। एकरस किसको कहेंगे, जो सदा उड़ती कला की अनुभव कहे। भगवान का कि एकरस क्या है कि सदा उड़ती कला की अनुभूति हो, उड़ती कला की महसूसता हो। तो भागा भवन बताए उड़ती कला किसको कहेंगे, तीव्र गति और हल्का निर्बंधन। तो आज बाबा ने बताया है कि तीव्र उड़ती कला किसको कहेंगे, जो हमारी कल की स्थिति थी उसकी कंपेयर में आज की स्थिति में परसेंटेज ज्यादा हो, तो उसको उड़ती कला कहेंगे। एक सेकंड की स्थिति कि एक कि जो एक सेकंड की स्थिति है उससे भी परसेंटेज ज्यादा हो, तो उसको क्या कहेंगे, उड़ती कला कहेंगे। फिर वाहन का जो ये जो तुम्हारे परखने की शक्ति की कम होती जाती है, तो उससे क्या नुकसान होता है, एक तो धोखा खा लेते हैं उससे, दूसरा होगा कि अपने अंदर भी जो कमी कमजोरियां है उसको नहीं जान सकेंगे, क्या समझेंगे कि हम तो सही है, हम जो कर रहे वही राइट है। तो इसको अपने को ही सही में क्या करते है? फिर अपने को ही सिद्ध करते रहते हैं और जिद करते रहते हैं। तो उनका ये तुम सिद्ध करते हो और जिद करते हो तो उससे क्या होता है, नुकसान ही होता है। और फिर आगे बताए बाबा ने कि कभी कभी ऐसी महसूसता भी होगी कि हमारे अंदर यही कमी कमजोरी है, लेकिन फिर परखने की शक्ति की कमी होने के कारण नहीं जान सकते कि सच में हमारे में ये कमी कमजोरी है। तो भगवान का ऐसे तुम क्या करते है, इससे जो विस्तार को बढ़ाते रहते हैं। एक तो क्या करते है कि हम खुद को सही सिद्ध करने में बड़ा हम ही सही है, या फिर जिद करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, विस्तार बढ़ता रहता है। तो भगवान का विस्तार को सार में समेट लो तो क्या होगा, खुशी की अनुभूति होगी कि हमने इस पर विजय प्राप्त कर लिया और हल्का भी रहेंगे। फिर आगे बाबा ने विधि बताई है कि परखने की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। भगवान का कि योग युक्त होकर परखने की शक्ति को बढ़ाओ, फिर एकाग्रचित होकर अपनी सूक्ष्म कमी कमजोरियों को चेक करो। तो इसे अपनी कमजोरियों को क्या, योग युक्त होना है तो हमारी परखने की शक्ति बढ़ेगी। और एकाग्र से क्या करना है, अपनी कमी कमजोरियों को चेक कर उसे मिटाना है। फिर बाबा ने आगे बताया है कि कर्मातीत अवस्था के बारे में बताया है, तो किसको कर्मातीत अवस्था कहेंगे, हाँ वही उसका मैं दूसरी जगह बोल दिया, हाँ छिपन, हाँ बावन का दूसरा कि बाबा से कुछ छिपाओ नहीं, छिपाते हैं तो क्या होता है, उसका विस्तार होता जाता है। इसमें बाबन का विस्तार तीन चीजों, एक तो बाबा से छिपाते हो, अपने को राइट होने का प्रयत्न करते हो और अपने को सही सही साबित सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहते हो और जिद करते रहते हो, इसलिए विस्तार होता जाता है। तो बाप से कुछ भी छिपाओ नहीं, तो नहीं छिपाएंगे तो क्या होगा, वाहन का तो जो विस्तार है उसका सार हो जाएगा और उसमें वाहन का की खुशी की अनुभूति होगी। फिर आगे बाबा ने कर्मातीत अवस्था के बारे में बताया है, तो कर्मातीत अवस्था किसको कहेंगे? कर्म के बंधन से मुक्त, तो इसमें वाहन का कर्म के बंधन से न्यारे, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म करते करते योग लगाना, कर्म के फल के प्रभाव से न्यारे। तो इस मूर्ति में बाबा ने कर्म की कर्मातीत अवस्था की परिभाषा दी है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु व कर्म के बंधन से न्यारे। दूसरा दूसरी दी है कि कर्म बंधन से न्यारे, कर्म से न्यारे नहीं। फिर आगे बताया कि कर्मातीत अवस्था अर्थात योगयुक्त जीवन मुक्त, योगयुक्त बंधन मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था। इसी मुरली में आगे चौथी परिभाषा दी है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु व वैभव को अपना सहारा न समझना, यही कर्मातीत अवस्था है। और भी दूसरे भी मुरली भावन बताया कि इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति ही कर्मातीत स्थिति है, कर्म के आकर्षण से परे भी कर्मातीत स्थिति है, हिसाब किताब से भी मुक्त। तो यह अलग अलग मूल्यों में बाबा ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो इसमें बाबा ने क्या कहा कि ब्रह्मा बाप की क्या आस है, क्या देखना चाहते हैं बच्चों में? तो ब्रह्मा बाप बच्चों में यही देखना चाहते हैं कि बच्चे भी बाप समान एवर रेडी और बंधन मुक्त बन जाए। तो इसमें बाबा क्या ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति में क्या देखा वो वर्णन किया। तो इसमें बाबा ने बोला कि अंत में कि अवस्था को कि देखा ना कि कितने समय में एवर रेडी हो गए, किसी की याद नहीं आई, सर्व बंधन से मुक्त रहे, कि फलानी कहाँ है, कि कोई सेवा की साथी कहाँ है, तो ऐसे किसी की भी याद नहीं आई। तो सबसे ज्यादा बच्चों ब्रह्मा बाबा का बच्चों से प्यार था, तो बावन का जितना प्यारा उतना ही न्यारा, कि वो अवस्था देखी एवर रेडी और कर्मातीत की, एवर रेडी और बंधनमुख अवस्था देखा, कैसे किनारा कर दिया कि वो भी देखा। तो बावन का इसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी वस्तु, जब कोई भी भोजन की वस्तु जो बन के तैयार हो जाती तो वो किनारा छोड़ देती है। तो इस बावन का कि संपूर्ण होना माना किनारा छोड़ देना। फिर विदेशियों से, विदेशियों में बाबा ने क्या कहा कि विदेशी कौन है? विशेष ब्रह्मा बाप की आवन की हुई आत्माएं हैं, कि जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो यही विदेशियों को विशेष आवन से बाबा आवन से आवन की हुई आत्माएं हैं, तो इसको बाबा विशेष पालना दे रहा है। तो उनका इसको शिक्षा सावधानी नहीं समझना है, क्या है विशेष पालना है। और एक विशेषता बताई विदेशियों की कि प्रश्न पूछते हैं और फिर जल्दी ही समझ जाते हैं, कि विदेशी सदा क्या होता है कि कर्मातीत बनने के उमंग उत्साह में सदा रहते हैं। हो गए तो निर्मल सा, आप फिर आगे बाबा उसने तो सिर्फ तीन ही बोला, योग युग जीवन मुक्त और बंधन मुक्त के बारे में बताएगी। तो बावन बोला सदा ऐसे कर्म बंधन मुक्त योग युक्त, सदा ऐसे कर्म बंधन मुक्त योग युक्त, सदा बाप को, सदा एक बाप को अपना सहारा बनाने वाले सूक्ष्म कमी कमजोरियों से मुक्त हो, किनारा करने वाले व्यक्ति वस्तु वैभव के सहारे से किनारा करने वाले एकाग्रता की शक्ति से परक शक्तिशाली बनने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त और कर्मातीत आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।
ओम शांति। अभी बहन ने जो अव्यक्त मुरली के बारे में चर्चा की है उसी पे से एक टॉपिक मैंने निकाला है। कर्मातीत अवस्था के लिए बाबा ने तीन शब्दों का इस्तेमाल किया इस मुरली में। पहला है कर्म बंधन मुक्त, दूसरा योग युक्त और तीसरा जीवन मुक्त। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो कर्मातीत अवस्था के लिए बाबा ने कहा है कि कर्म के बंधन से न्यारा, अर्थात न्यारा होके जो कर्म करे वही कर्म कर्मातीत अवस्था है। तो यह कर्मातीत अवस्था कैसे अचीव की जाए, क्या मेथड है उसको पाने का? क्योंकि सब कहते हैं कि कर्म से न्यारा होके करना है, कर्म के फल में आसक्त नहीं होना है। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम ये सुनते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है, तो इस पर चर्चा करते हैं। आप लोग बताएंगे कुछ आपका अनुभव हो तो कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए। हाँ, मतलब निमित्त भाव और निमित्त भाव के अलावा भी एक चीज और चाहिए होती है। निमित्त भाव कैसे आएगा, अपने अंदर निमित्त भाव कैसे ला सकते, क्योंकि निमित्त भाव बहुत ऊंची स्टेज होती है। इस निमित्त भाव को कैसे अचीव किया जा सकता है? ये तो निमित्त भाव की डेफिनेशन हो गई कि वो करण करावन हार है और मैं करण हार हूं, लेकिन निमित्त भाव जागृत कैसे हो, ये भाव डीपली कैसे हमारे अंदर इमर्ज हो जाए, हमें बार बार सोचना ही ना पड़े कि मैं निमित्त हूं। हाँ, राइट। देखिए, जितना अपने को आत्मा समझेंगे, पहला पाठ ही यही है कि खुद को आत्मा समझना है। जब देह का भान होता है तब बार बार याद दिलाना पड़ता है कि निमित्त भाव में रहना है, लेकिन जब आत्म स्थिति की इतनी अच्छी आत्मिक स्थिति हमारी पावरफुल हो जाए कि मैं आत्मा हूं, यह बार बार सोचना ना पड़े, दिन में बार बार अपने को रिमाइंड ना कराना पड़े, इसका इतना अच्छा अभ्यास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर निमित्त भाव स्वतः ही निरंतर बना रहेगा। उसमें बार बार इमर्ज नहीं करना पड़ेगा कि मैं निमित्त हूं वो करण करावन हार है। तो निमित्त भाव, और निमित्त भाव के अलावा एक चीज और चाहिए कर्मातीत अवस्था के लिए, दो चीजें होती हैं। पहला तो निमित्त भाव है ही, उसके पहले भी समर्पण भाव होना चाहिए। जब समर्पण भाव होगा तो निमित्त भाव स्वतः ही अपने आप ही बनता चला जाएगा। तो समर्पण भाव मतलब वह निमित्त भाव है। समर्पण का मतलब क्या होता है, आप कहीं समर्पित हो रहे हैं तो उसको समर्पण कैसे कहा जाएगा? जैसे बाबा के लिए, बाबा को बच्चे जो हैं समर्पित होते हैं यहाँ पे, तो बाबा क्या चाहता है, कैसे समर्पित हूं, मुझे तन मन धन से समर्पित हूं, बुद्धि तो सरेंडर कम सब बाप का है। ठीक है, बताने में तो ठीक है सब बाप का है ना। अब यहां फिर से आता है कि नॉलेज का मतलब ये प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो हम समर्पित हैं, तन मन धन हमारा, बुद्धि हमारी समर्पित है, बाबा को तो यही चाहिए ना कि पूरी बुद्धि पूरा मन आपका मुझे समर्पित हो। तो कैसे पता चलेगा हम समर्पित हैं? स्थूल समर्पण तो कर दिया, घर छोड़ दिया, धारणाओं पे आ गए, सब कुछ जो अकॉर्डिंग जो है सब सिस्टम के हिसाब से चल रहे, फिर भी वह प्रोग्रेस क्यों नहीं है, कर्मातीत अवस्था क्यों नहीं है? कर्मातीत अवस्था, चलिए बहुत पीछे की बात है, ये जो न्यारापन है कर्म में रहते हुए निमित्त भाव, ये क्यों नहीं आता, निरंतर क्यों नहीं रहता? क्यों मन मत आ रही है, क्यों समर्पण कंप्लीट नहीं है? बाबा एक मुरली है, अव्यक्त मुरली है, 70 की है शायद, उसमें बाबा ने कहा है कि जितना तुम समर्पित होते जाओगे उतने तुम संपूर्ण बनते जाओगे। बहुत गहरी बात है ये, यहां सब संपूर्ण बनने आए हैं। कोई भी ऐसा है जो शायद लक्ष्मी नारायण ना बनना चाहता हो? कोई नहीं है, कोई दास दासी नहीं बनना चाहता, सब लक्ष्मी नारायण ही बनना चाहते हैं, मतलब संपूर्ण बनना चाहते हैं। और बाबा ने क्या कह दिया, जितना जो समर्पित होगा उतना ही वो संपूर्ण होगा। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया है, इसमें अपने आप को लॉजिकली फिट करना है। मेरा समर्पण जो है क्या वह संपूर्ण समर्पण है? फिर बाबा ने कहा है संपूर्ण समर्पण की क्या परिभाषा है। स्थूल समर्पण तो आपको सबको पता है क्या है, धन मन धन, तो ठीक है एक लिमिट जी है ना। सबसे पहले आता है मनसा वाचा कर्मणा, तो उसके पीछे रचना तो सीधे मन में होती है। पहले सबसे सूक्ष्म इकाई जो है किसी भी रचना की वह मन में ही होती है। और बाबा का टारगेट, मैंने उस दिन भी कहा था कि मन ही रहता है, वो कहता है अपने मन को मुझे दे दो, मांग रहा है। यहां तो हमें ऑफर करना चाहिए कि भगवान आए हैं लो ले लो, और वो निरंतर मांग रहा है अपने मन को मुझे दे दो, मन मनाभाव की स्थिति में स्थित हो जाओ। तो मन को समर्पित करना है, उसके पीछे पीछे सारा समर्पण स्वतः ही धीरे धीरे ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। ये नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा धन भी तेरा है, क्योंकि मन से कहते वो गीत चलता है ना, जहां धन होगा वहां मन होगा, वो योग के बाद जो चलता है। तो जो मन है जब उसको धन बना लेंगे, उसको अपना सर्वस्व बना लेंगे, वो भगवान है, तो हमने उसको अपना मन समर्पित जब कर दिया तो ऑटोमेटिकली संपूर्ण समर्पण हो गया। मतलब मेरा हर संकल्प, मेरा हर समय, मेरा हर कर्म, सारे संबंध, सारी संपत्ति सब उसकी हो, मतलब उसकी हो गई। यहां तक कि बाबा ने इवन ये भी कहा है, ये संबंध जो आत्मा और देह का है ये भी मुझे समर्पित कर दो, ये भी तुम्हें भान ना हो, आत्मा और देह का जो संबंध है ये भी मुझे समर्पित कर दो। संपूर्ण समर्पण मतलब उसको, उसके लिए कहते थे इसको होश ही नहीं है कि किसके साथ उठ बैठ रही है, इतनी बड़ी महारानी है। देखो वो तो बहुत ऊंची अवस्था, वो भी भक्ति प्रेम अवस्था थी उसकी, कि वो दीवानगी वाली स्थिति जिसे कहा जाता है। यहां तो बाबा बहुत समझदार बना रहे हैं, कल भी बाबा ने कहा तुम देवता बहुत समझदार हैं तो समझदार बनना है। और तो सबसे अच्छा है समर्पण है, मन का समर्पण करना बहुत जरूरी, उसके बाद निमित्त भाव स्वतः ही आएगा। निमित्त भाव मतलब जी कोई अभिमान नहीं, बिल्कुल सही। परमात्मा ही करण करावन हार है, यह स्मृति और अपने देह भान की विस्मृति, यही निमित्त भाव है। मैं देह हूं, जो देह का भान है उसकी विस्मृति हो जाए, और करण करावन हार परमात्मा है, इसकी स्मृति सदा ही बनी रहे, यही जो है निमित्त भाव है। निमित्त भाव से ही धीरे धीरे हम कर्म योग की तरफ बढ़ते हैं। कर्म योग एक दिन में नहीं हो जाता, बाबा कहते हैं कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए दिन भर। तो और ये भी कहते हैं निरंतर मेरी याद में रहो, निरंतर हम उसकी याद में कैसे रहें, क्योंकि निरंतर अमृत बेला किया, मुरली सुनी, उसके बाद अपने कर्म स्थल पर जाना है, कर्म करने, तो कर्म में निरंतर याद कैसे बनी रहेगी? यही जो निमित्त भाव की स्थिति है, यही कर्म योग का पहला चरण। जब हम निमित्त भाव में स्थित हो जाते हैं तो करण करावन हार वो है, मतलब मैं ट्रस्टी हूं। निमित्त भाव में विदेहीपन की स्थिति बहुत जरूरी है, विदेही मतलब अपने देह का तनिक भी भान ना रह जाए, और विदेही का मतलब ये भी है कि मैं आत्मा करण करावन हार इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं, मतलब यहां भी देह भान से न्यारे हैं। चाहे परमात्मा करण करावन हार है, चाहे मैं आत्मा करण करावन हार हूं, लेकिन यहां मेन जो हमारा टारगेट हुआ है देह भान से न्यारा होना है। तो संपूर्ण समर्पण, उसके बाद निमित्त भाव, तो इन दोनों से मिलता है हमें कर्म योग की स्थिति हमारी आ जाती है अवस्था। तो कर्म योग के लिए आप लोग बताएं कर्म योग का क्या मतलब होता है? कर्म योग का बैलेंस याद में रह के कर्म करना, जी और बताइए, कर्मयोग को बाबा ने क्या कहा है कर्मयोग के बारे में, और कुछ विद द पॉइंट? हाँ, उसमें याद समाई रहे बाबा की, कर्म कर दे जी। मैं आत्मा हूं ये याद रहे और फिर कर्म करें। देखिए बाबा कह रहे हैं कि कर्म योगी का मतलब है कि कर्म करते समय कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना हो। कर्म जो कर रहे हैं उसका फल मिलेगा, कुछ ना कुछ संकल्प रच रहे हैं, उस रचना का भी कुछ कर्म हो रहा है, उसका ही फल मिलेगा। तो उस कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना हो, चाहे वो अच्छा मिल रहा है फल, चाहे वो कुछ कम मिल रहा है या कुछ बुरा ही मिल गया, तो उससे प्रभावित नहीं होना है। ये सोच कर्म नहीं करना है कि मैं कर रही हूं तो मुझे ये प्राप्ति हो। तो जब निमित्त ही बने हुए हैं तो इच्छा पैदा ही नहीं होगी कि हमको फल मिले वैसा, या बुरा मिला तो मेरे को ही क्यों मिला ऐसा, मैंने तो 100% दिया था। काम उसका है, मैं तो निमित्त हूं, तो कर्म उसका है तो फल भी उसका हुआ, उसको ही समर्पित होना चाहिए। यह कर्मयोग की अवस्था होती है कि जो भी कर्म कर रहे हैं उससे अनासक्त है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ होने के लिए। स्थित प्रज्ञ एक शब्द बोला है श्री कृष्ण ने, तो अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ मैं कैसे बनूं और इसके क्या लक्षण है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि स्थित प्रज्ञ वह आत्मा होती है जो अपनी सर्व मनोकामनाओं को मुझे समर्पित कर दे, मन से समर्पित कर दे, जिसकी अपनी खुद की कोई इच्छा ही ना हो, ना कोई लगाव हो, ना वह किसी परिस्थिति व्यक्ति वस्तु से प्रभावित हो। मतलब उसके मन की स्थिति इतनी, उसकी बुद्धि इतनी स्थिर हो चुकी है कि कोई भी परिस्थिति व्यक्ति कुछ भी उसको प्रभावित नहीं कर सकता। संपूर्णता की स्थिति में पहुंच जाता है, वह स्थित प्रज्ञ है। उसकी तुलना की उन्होंने कि जैसे नदियां होती हैं, नदियों में कहीं से पानी आ जाए तो वो बाढ़ मचा देता है, तबाही हो जाती है, अपनी लिमिट से बाहर चली जाती है। लेकिन सागर जो होता है, सागर में कितनी नदियां जाके मिलती हैं लेकिन उसकी स्थिरता में कोई कमी नहीं आती, वैसे ही ये स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वह इतना स्थिर हो चुका है, उसको परम आनंद की वह अनुभूति हो चुकी है कि छोटी बड़ी कोई भी लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख कुछ भी प्रभावित नहीं करता। इसी तरह परमात्मा जो है उसको भी सागर कहा गया है। क्यों? सागर से ही तुलना की जाती है परमात्मा की। चाहे कितना भी उसको कुछ भी, वो स्थित है परमात्मा, एकदम स्थिर प्रज्ञ जैसी स्थिति जो होती है, एकदम स्थिर रहता है उसको, किसी भी उसको कुछ भी बोलो एकदम साक्षी है, उसको पता, वो अपने में ही संपन्न है, अपने में ही संपूर्ण है। तो बाप समान स्थिति बनानी है, कहते हैं बाप समान स्थिति ही कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है तो बाप समान स्थिति क्या होती है, हम उसके समान कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि बाप क्या है, क्या क्या क्वालिटीज है उसकी, उसकी गहराई में जाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि अगर परमात्मा है, शिव बाबा है, वह कितनी स्थिर स्टेबल है, साक्षी है। खुद कहते हैं मैं साक्षी हूं, सदैव साक्षीपन की स्टेज पे स्थित हूं, दुनिया से अलग है, लेकिन वो कहते हैं बाप समान ही बनना है। हमारा उद्देश्य क्या है, वो क्या है, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कहां पहुंचना है, वह रास्ता क्या है, वहां तक मैं कैसे जा सकती हूं, इसके बारे में सोचना है। तो बाप समान स्थिति कर्मातीत अवस्था के लिए आपको सबसे पहले संपूर्ण समर्पण, दूसरा निमित्त भाव, उसके बाद जैसे ही निमित्त भाव होगा तो कर्मयोगी की अवस्था स्वतः ही बनेगी। और कर्मयोगी से आप धीरे धीरे धीरे, जैसे कर्मयोग की अवस्था आती है तो अपने आप जो कर्मों के बंधन होते हैं उनसे आप मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। जब कर्मयोग की अवस्था है, जब न लाभ से मतलब है न हानि से मतलब है, जब कुछ कर्म हुआ ही नहीं तो उसका फल मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, जब अच्छा नहीं बुरा नहीं तो अकाउंट मेरा क्या होगा, सेटल होगा, अकाउंट मेरा न खराब में जाएगा ही नहीं। और चूंकि परमात्मा की आज समर्पण है इसलिए वो चीज बढ़नी ही है। इसलिए कर्मयोग की अवस्था में रहते रहते धीरे धीरे जीव कर्म बंधन मुक्त, उसके बाद फिर योग युक्त, अर्थात सब कुछ बाबा का है, वह करण करावन हार है, यह स्मृति में रहते हुए कर्म करना ही योग युक्त अवस्था है। इसमें आएंगे, फिर जीवन मुक्त अवस्था अर्थात इस देह की पुरानी दुनिया में कोई भी आसक्ति कोई भी आकर्षण ना रहना, वह जीवन मुक्त अवस्था है। तो जीवन मुक्त अवस्था स्वतः ही प्राप्त होगी। तो धीरे धीरे एक दिन में तो ये होने वाला नहीं है, सबसे पहले देह भान से मुक्त होना होगा। ये तो आपके लगन के ऊपर है। आजकल के मुरलीम बाबा ने कहा है कि जितना आप एक एकाग्रता मतलब एक बाप की ही लगन में अगर मगन रहेंगे, वह एकाग्रता बढ़ती जाएगी तो स्वतः ही बुद्धि महीन होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि महीन होगी उतनी महीन चीजों को वह कैच करेगी, क्योंकि परखने की शक्ति बढ़ गई, और उतनी महीनता से उनको क्योंकि शक्ति बढ़ गई है पता चल गया है तो फॉलो करेंगे। तो कितना आप समय देते हैं स्वचिंतन के ऊपर, आत्मविलास के ऊपर, कितना समय आपका जाता है, ये निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी उस अवस्था को प्राप्त करते। एक एक अवस्था को भी अगर प्राप्त करते चले गए तो सब कनेक्टेड है आपस में, धीरे धीरे कर्मयोग की अवस्था स्वतः बन जाएगी। तो काम करते समय ही याद में रहना वो बड़ी बात नहीं है, वो तो स्मृति में रहना ठीक है, लेकिन कर्म करते समय कर्म के फल के प्रति अनासक्त भाव, इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करनी होगी। क्योंकि अब तो बहुत समय हो गया, कब से बाबा ये चीज कह रहे हैं, हम लोग तो बहुत लेट है इसको समझने के लिए भी और करने के लिए भी, अभ्यास बहुत समय चाहिए। बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, इतने आराम से ये सब नहीं मिलने वाला, तो जो चीज समझ में आ गई उसमें लग जाना चाहिए। ठीक है, ओम शांति।
हे तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए।
हे तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए।
हे संग जैसा रंग लगे खोटे कर्म ना हो जाए, एक दिन माटी में मिल जाए।
तन का तो मोहन कीजे रे मानवा, एक दिन माटी में मिल जाए।
राग द्वेष काम क्रोध अहंकार तज के अपना ले रहा सत की शिव को तुमर ले,
अपना ले रहा सत्य की शिव को तुमर ले।
हो दुनिया के चक्कर में तू भूल नहीं जा, तू सद्गुणों से भर ले,
जीवन को तू सद्गुणों से भर।
झूठी काया झूठी माया इसमें ना भरमाए, रे मनवा एक दिन माटी में मिल जाए।
तन का तो मोहन कीजे